सुने हुए वचनों को खूब मनन करते थे। नहीं तो खाली श्रवण होता नहीं, श्रवण होने से पुण्य तो होता है, महायज्ञ का पुण्य होता है, लेकिन मनन करने से फिर वो बात बैठती है। नित्यध्यासन करने से फिर आत्मा का रस, आत्मा का आनंद, आत्म मस्ती आने लगता, फिर साक्षात्कार होता है। श्रवण, मनन, नित्यध्यासन, सुना है उससे 10 गुना टाइम मनन में लगा ले, 1 घंटा सुने तो 9 घंटे मनन कर, मनन से भी 10 गुना नित्यध्यासन में समय तो साक्षात्कार होता। नहीं तो माया जाल काटना कठिन, जो कई करोड़ों जन्मों के संस्कार, कई जन्मों के संस्कार, पक्षी बना तभी भी डरता रहा दाना चुगने के लिए, कुत्ता बना तभी भी पूंछड़ी हिलाता रहा, मनुष्य बना तभी भी गिड़गिड़ाता रहा, सारे विश्व का स्वामी होने का वो दब गया ना, ऊपर परते चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, तो चैतन्य स्वभाव तो दब गया, अभी भी जरा जरा बात में डर आ जाता, दरोड़ा पड़ता है मुंबई में और धबकारे चलते अहमदाबाद से, ये जीवत्व का स्वभाव है ना। तो कोई आदमी मर रहा है और अपने को मरने का भय आ रहा है, तो माया जाल घुसा है ना, अपनी अमरता का पता नहीं है ना।
वेदांत बुद्धि, लेकिन वेदांत सुनकर मनन करना चाहिए, नहीं तो रोते ही रहेंगे चाहे कितना भी ध्यान हो जाए। जब तक वेदांत का मनन नहीं होता, आत्मज्ञान का मनन नहीं होता, इस परमात्मा चेतना की कल्पना का रहस्य आदमी नहीं समझता, उस रहस्य में टिकता नहीं, तब तक ये कल्पनाओं के चक्कर में मारा मारा फिरता
है। संबंध विच्छेद कर ले, इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मन बदलता मैं तो नहीं बदलता हूँ, शरीर बदलता मैं तो नहीं बदलता हूँ, तो अपना जो मैं शुद्ध बुद्ध चैतन है उसका अनुसंधान अभ्यास बढ़ा दे, फिर विकार की दाल नहीं गलती, पतन की दाल नहीं गलती। राजा जनक के नाम, सुखदेव महाराज के नाम,
मन से तो चलता रहेगा, तो मन के चलन को जो देखता है उसका मन रुक जाता है। भोला बाबा कहते हैं, मन मार देता धीर सो भवबंध से छुप जाए। जो मन को मार देता है, मन के कल्पनाओं को, संकल्पों को हटा देता है, संकल्पों को देख के संकल्पों से अपना पिंड छुड़ा देता है, वो उतर जाता है। बाकी तो कोई ईसा की
और अपने को देह मानना बड़े में बड़ी अशुद्धि है, जगत को सत्य मानना बड़े में बड़ी अशुद्धि है, भोगों से मेरे सुख मिलेगा ये बड़े में बड़ी अशुद्धि है, नालायकी है, अज्ञान है मन का। भोगों में सुख बुद्धि, जगत में सत्य बुद्धि, देह में अहम बुद्धि, ये अशुद्धि के कारण है। आत्मा में अहम बुद्धि, जगत में मिथ्या बुद्धि और भोगों में विरक्तता बुद्धि, ये शुद्धि के लक्षण है। ओम 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 ओम
आता हूँ। साधक ने प्रणाम किए, अच्छा महाराज अब मैं जाता हूँ अपने गांव। महर्षि ने कहा, यदि तू आया हो तो जा, तू आया हो, तमे आव्या हो तो भले जाओ। क्या हूँ आव्यो तुन? बापजी को बस तारे, तो आप इधर 1 दिन 2 दिन रहे समझ नहीं पाए। बोले हाँ 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 महाराज, मैं नहीं आया था, मेरा देह आया था और देह जाता है, मैं कभी आता जाता नहीं हूँ, घड़ा आता है और घड़ा जाता है, घड़े के अंदर जो आकाश दिख रहा है वो ना आता है ना जाता है। बड़ी ऊंची बात है, हजार हजार उपवास करो, लाख लाख मंत्र जप करो, लेकिन ये जागृति ये स्मृति जब तक नहीं आती। सुनी हुई है कहानी,
काम सुख में ज्यादा देर ठहर के दिखाओ, क्रोध में ज्यादा ठहर के दिखाओ, मोह में ज्यादा देर ठहर के तो दिखाओ, मारो छोकरो मारो छोकरो मारो, कितनी देर करेगा? मारू बहिरू मारो पति कितनी बार कर सो, नहीं टिक सकते तुम।
स्वभाव आनंद स्वरूप, आनंद में तुम 10 घंटे बैठे जाओ, सुख सुख में आनंद आनंद में तुम जिंदगी बिता लो, बिता सकते हो। सरोवर के ऊपर ऊपर तुम घंटों भर तैर सकते हो, लेकिन सरोवर के तल्ले में घंटों भर नहीं बैठ सकते। क्योंकि पानी के ऊपर रहना मनुष्य का स्वभाव है, पानी के नीचे रहना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। अब मछली को सरोवर में तुम सारी जिंदगी गुजरा दो, रह लेगी, उसका स्वभाव है। सड़क पे उसको एक घंटा रखो, अरे एक मिनट में भी कितना छलकती, कितने तड़पती, पर स्वभाव है देहों का, उसकी देह का तुम्हारे देह, ऐसे तुम्हारा और विकारों का विपरीत। विकार भोगने के बाद आदमी देखो खिन्न होता है, अशांत, और सुख भोगने के बाद अपने स्वभाव में होता है। अपना स्वभाव मन आत्म स्वभाव शांत स्वभाव, वही अपना धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह। लोग बोलते हैं मैं तो गुजराती हूँ इसलिए मेरा धर्म गुजराती है, नहीं मैं क्षत्रिय दम क्षत्रिय दम में हूँ फलाना, स्वधर्म स्व मन अपने स्वरूप, अपने स्वरूप चिंतन करते करते मर जाना भी बहुत सुखद होता है, शूली पे चढ़ जाना भी अच्छा होता है, लेकिन पर धर्म ये विकारों का धर्म है ना, वो भयावह। भय आ ही जाता है जब आदमी क्रोध करता है, या कोई अंदर बेचैन होता है, या किसी के लिए मेल नहीं बैठता विचारों का मन का, तो अशांति और भय दोनों साथ में चलते हैं। ये पर धर्म है ना, अपना थोड़ा धर्म। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह। शुभ नहीं रहेगा तो तुम अशुभ कैसे देखोगे? तुम्हारे अंदर शैतान नहीं है तो शैतानत कैसे दिखेगा? शैतानत दिखता है, अशुभ दिखता है तो अशुभ है। जो तुम्हारे अंदर है वही दिख सकता है। शांति है तो शांति शांति जगत दिखेगा, अंदर बेचैनी है तो दुनिया बेचैन दिखेगी। जो तुम्हारे अंदर नहीं है वो कैसे दिखेगा? युधिष्ठर को बोला जाओ
सकलम मिलिनम तस्मिन जिगिरने सकलम जिगिरनम। मन से अतिरिक्त अविद्या नहीं है, मन ही अविद्या है, और वही भाव बंध का हेतु है। उसके विलय होने से सकल सब विलय हो जाता है, तो उसका विलय कैसे होगा? कि मन को मन समझ लेना उसका विलय हो गया। जैसे आप मुसाफरी करते ना, तो कोई जेब कतरा जेब काट रहा है आपकी, आपकी नजर पड़ती है, आप उसको देखते रहते हैं। आप बोले अच्छा पैसा नहीं जरूर से का पुतम तुम्हारे, वो जेब कतरा तुम्हारे लिए विलय हो गया, अब नहीं काटता, ठीक है ना? खीसू कोई कापे छे तमारू, कापन तैयारी करे छे, अन तमे जुओ ने यार भाई खीसू कापू छे तारे के ना, हूं तो गम्मत करतो एवुं क्या छे। ऐसे ही मन की स्थिति को देखने से मन विलय हो जाता है। मन जैसा कहे ऐसा करने से तो मन और पनपता है, मन में जो आए उसीलिए गुरुमुख और मनमुख में फेर होता है। जैसा मन में आया ऐसे करने लगा तो उसको मन पटक पटक के ले जाता है जहां चाहता है। मन गुरुमुख का अर्थ यह है कि जहां तुम्हारा मन कहता है वहां नहीं, जहां तुम्हारा हित तो वो गुरु कहेंगे, और मन बोलेगा कि हम नहीं ओम छे बराबर। तो गुरु और शिष्यों के बीच, रामकृष्ण और विवेकानंद के बीच में 6 बार टसल हो गया था, अश्रद्धा हो गई थी, क्योंकि मन भगाना चाहता है वहां से। विवेकानंद लिखते हैं कि 6 बार मेरी अश्रद्धा हो गई अपने गुरुदेव के प्रति, कभी तो गुरुदेव ने चोटी पकड़ ली, कभी मैंने क्षमा याचना मांग के पैर पकड़ लिया, बच गया। ऐसे ही मन जो है ना,
मन हमारे आध्यात्मिक खजाना लूटता रहता है, उसको रोकेंगे तो भी, रोकेंगे भी किससे, तो मन के हिस्से से ही तो रोकना हुआ, वहां भी तो मन हुआ। ईश्वर को पाएंगे तभी भी मन को चाहे, मन चाहे चिंतन करेंगे तो चिंतन तो मन का चालू रहेगा। पहले दुनिया का चालू कर रहा था, अभी मूर्ति का चिंतन कर रहा है, वहां भी तो मन है। मन चित्त जीव एक ही वस्तु के नाम, उसी की सत्ता से जीवन है, उसलिए उसको जीव बोलते हैं। मनन करती है वृत्ति, उसलिए मन बोलते हैं। चिंतन करती है, उसलिए चित्त बोलते हैं। अहम करती है शरीर में, उसलिए उसको अहंकार बोलते हैं। निर्णय करती है वृत्ति, उसलिए उसको बुद्धि कहते हैं। उसी वृत्ति का, उसी अपने मैं की चेतना के स्पंदन का नाम है सब। अपनी जो शुद्ध चेतना है, अपने जो मैं है, उसका जो स्पंदन है उसका नाम मन है, उसका नाम जीव है, उसका नाम चित्त है, उसका नाम अहंकार है, उसका नाम माई है, उसी का नाम भाई है, उसी का नाम गुंडा है, उसी का नाम साधु है। वही वृत्ति बुरा करते तो गुंडा, अच्छा करते तो साधु, स्त्री शरीर में आते तो माई, पुरुष शरीर में तो भाई। जैसे फुगे होते ना, कोई गोल गुब्बारा, कोई काकड़ी बनाते, काकड़े बने वो बनाते, उसी को जानना है। कैसे जाना जाए कि मन को देखते जाओ, मन को जानते जाओ, तो मन को जो जान रहा है वही मैं हूं, ऐसा चिंतन करने से वो जाना जाता है। और जो थोड़ी प्रतिकूलता महसूस हुआ भागेगा तो मन चढ़ बैठेगा, जहां प्रतिकूलता है वहां डट जाओ, प्रतिकूलता से भी डटे रहो, अनुकूलता में भी डटे रहो। डटे रहोगे तो मन देखेगा क्या इनको नचाना मुश्किल हो गया। बच्चा जैसा कहता है ऐसा वो करने लग जाता है, वजीर जैसा कहता है ऐसा राजा करता है, तो वजीर का अधिकार बढ़ता जाता है। ऐसे अपन को जैसा मन कहता है ऐसा अपन लोग करते रहते हैं, इसीलिए मन का प्रभाव बढ़ जाता है और अपन मारे जाते हैं।
शांति क्यों नहीं मिलती? कामना पूर्ति के लिए मन लालायित रहता है, इसलिए शांति नहीं मिलती। मन चाही संसारी परिस्थितियां नहीं मिलती, इसलिए शांति नहीं मिलती। मन चाही वस्तु मिली थोड़ी देर के लिए शांति, फिर मन दूसरी वस्तु में भागता, इसलिए शांति टिकती नहीं। बाबा अपने दोष कैसे देखे और कैसे मिटाए? जैसे दुश्मन के दोष दिखते ऐसे अपने शरीर और मन के दोष देखो। और जैसे अपने गुण देखते हैं ऐसे दुश्मन के गुण खोजो। जिस कर्म से, जिस योग्यता से दूसरे के दोष खोजते हो दुश्मन के, उसी कर्म और उसी योग्यता से अपने दोषों को देखो और खोजो, निकल जाएंगे। उससे भी और तरीका है कि दोषों को खोजकर निकालने के लिए दोषों के तरफ डंडा लेकर ना पड़ो, हो सकता है कि खफे हो जाओ, हार जाओ। निर्दोष नारायण का चिंतन ऐसा बढ़ा दो कि न दोष करने का अवसर रहे, न दोष देखने का अवसर रहे, एकदम आसानी से पार हो जाओगे। ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत ये बात मुझे लगती है।
कल का जागृत का अलग अलग व्यवहार आया, जागृत आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, फिर भी जो नहीं गया वो साक्ष। तुम्हें साक्षी खाली एक के कैसे? अरे एक शरीर को मैं मानते हैं, अविद्या का आश्रय लेते तभी बोलते हैं हम इसी के साक्षी। दो ही का वही साक्षी सब सब में है। घट आकाश तो एक ही घड़े में आकाश थोड़े है, एक घड़े में जो आकाश है सभी घरों में, सभी मकानों में, सभी सूरज और चंद्रमा में वही है आकाश। विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। ऐसे अपने शिवो हम स्वभाव को जान के मस्त हो जाने के काय को दुखी होना किसी की द्वेषपूर्ण होना किसी की द्वेषपूर्ण बात सच्ची मानना रागपूर्ण बात सच्ची मानना मरने वाली चीज सच्ची मानना। तुम जिसको मानते हो वो महत्व बुद्धि वाला हो जाता है। मैं शरीर हूं तो शरीर महत्व बुद्धि वाला हो जाता है। दुश्मन के ऊपर ध्यान देते तो दुश्मन का कीमत बढ़ जाती है। शरीर पर ध्यान देते तो शरीर का महत्व बढ़ जाता है। जगत पे ध्यान देते तो जगत का महत्व बढ़। तुम अगर नहीं दो चेतना तो जगत को पता है क्या जगत है? तुम्हारे मन में जिसके प्रति अहोभाव होता है वो वस्तु महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत अच्छी अच्छा तुम अपना प्रीति देते हो वस्तु को तो पता नहीं मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ। तुम ऐसे चैतन्य साक्षी हो तुम्हारी सत्ता से ही सब सब दिखता है। तुम्हारी सत्ता से श्वासोश्वास चलता है। तुम्हारी सत्ता से ही खून बनता है। तुम्हारी सत्ता से ही मन बुद्धि स्फूर्तता है। तुम सबको सत्ता देने वाले फिर घबरा के श्वास अंदर आए तो सो बाहर आए तो हम जीप तालू में लगा दिया योनि को सकोल ली सो हम मैं वही सत्ता देने वाला साक्षी चैतन्य दुख सुख का साक्षी जन्म मृत्यु से परे सो हम बस गुरु तत्व का साक्षात्कार हो तो गुरु से मिलने का तरीका यही है एकत्व गुरु का आत्मा के साथ प्रीतिपूर्वक भजे। राग द्वेष और दुख क्यों होते हैं कि असली बात समझते नहीं तो नकली शरीर को मैं मानते जब शरीर सदा नहीं है तो शरीर के द्वारा किसी ने कुछ बोल दिया तो भी सदा नहीं लेकिन वो चिंतन रहता है तो मन में दुख आ जाता है। दुख आना समझ की कमी ज्ञान दृष्टि से तो दुख खोजो तो है ही नहीं कोई कैसा भी व्यवहार कर दुख हो ही नहीं सकता तो कोई कैसा भी खुशामत करे हो नहीं सकता। दुख दुख मन की वृत्तियां उसको जानने वाला झोंका क्यों है ऐसा सार ये विठल का दर्शन ये गुरु दर्शन है पांडुरंग दर्शन। कल का जागृत का अलग अलग व्यवहार आया जागृत आया चला गया सुषुप्ति आई चली गई स्वप्न आया चला गया फिर भी जो नहीं गया वो साक्ष
मैं सुख तो मैं दुखी नहीं होता मैं सुखी नहीं होता मैं को बंधन ही नहीं होता लेकिन शरीर को मैं मान लिया तो अहंकार हो गया। मन को मैं मान लिया बुद्धि से मैं बुद्धि को मैं मान लिया अहम को मैं मान लिया तो परेशानी लेकिन मूल मैं को स्वीकार कर लिया सारी परेशानी एक चिटकी में खाया। इसी को साक्षात्कार बोलते इसी को ब्राह्मी अवस्था बोलते ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहना शेष तो इसके लिए कहीं तीर्थ में जाना कहीं पूजा करना तप करना ध्यान करना ये करना वो करना कुछ कर्तव्य नहीं। मुक्त आत्मा हो गया जीवन मुक्त। कईयों की पूजा होती देवी
और खीर अकेले मत खाना जरा मेरे तरफ भी एक और भेज दिया करना आए है उसी समय आनंद आएगा लो साई खाओ उसी समय आनंद भेजूंगा बंदे में चाहे कितने भी दूर दूर हो ही नहीं सकते आप। आपका चैतन्य विभु व्यापक है आपके मन में इस चैतन्य के 6 दिव्य गुण हैं। उसी समय आनंद भेजूंगा बंदे में चाहे कितना चैतन्य विभु व्यापक है, आपके मन में इस चैतन्य के 6 दिव्य गुण हैं। सूर्य की किरण चलती 186,000 माइल की गति से 8 मिनट में पहुंचती है और आप उसी समय सूरज को देख लेते हैं। कितनी दिव्यता है आपके व्यापकता की, आपकी चेतनता की। आप विषय को प्रकाशित करते हैं और विषय को जिस भाव से देखते हैं उसी भाव के बन जाते हैं। जिसमें सुख उदेलते हैं वो सुख रूप हो जाता है। है अगर मैं नफरत से देखूं तो इसकी क्या ताकत है मुझे सुख दे। मैं शराब को प्यार से देखता हूं तो शराबी बनता हूं, मांस को प्यार से देखता हूं तो मांसाहारी बनता हूं, जुआ को अच्छा देखता हूं तो मैं जुआरी बनता हूं, और इन सब बेवकूफी से मैं पार आता हूं तो अपने आप में आनंदित होता हूं। ये सब मेरे ही खेल है। आपको ईश्वर से योग करना है कि ईश्वर का भोग करना है बोलो। जिसको भोग करना है वो हाथ ऊपर करो। कोई हाथ ऊपर नहीं करते सब फेल हो गए। ईश्वर का भोग नहीं करोगे क्या गधे कुत्ते बिल्ले का भोग करते हो? दिन रात ईश्वर का ही भोग कर रहे हैं। जब सर्वत्र ईश्वर है तो भोग किसका कर रहे हैं आप? जीवन पर एक इंजेक्शन मार दे और आपको ज्ञान नहीं हो तो क्या भोग होगा? नहीं तो ज्ञान क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ईश्वर का ही भोग हो रहा है। चीज वस्तु सब ईश्वर की है और यहां भी ईश्वर है, पति पत्नी सब ईश्वर है। ईश्वर का भोग हो रहा है और ईश्वर से योग भी हो रहा है। लेकिन भोग संयत करो तो ईश्वर के योग में और ईश्वर के भोग में पास हो जाओगे। भोग अधिक करो तो ठुस हो जाओगे। ईशावास्यम इदम सर्वम। सब ईश्वर है तो भोग तुम ईश्वर का करते हो कि दूसरे किसी का करते हो बताओ? वासुदेव सर्वम इति है तो भोग किसका कर रहे? ईश्वर का भोग कर। लेकिन पता नहीं ईश्वर का भोग करे तो तुम ईश्वर का भोग करने वाले कौन? ईश्वर के बड़े हो? नहीं, ईश्वर के ही स्वरूप है। तो हम अपने आप का भोग कर रहे हैं। अपने आप का भोग करो संयत से तो अपने आप को जानोगे, और अपने आप का भोग करोगे बेसंयम से तो अपने को अज्ञानी मूर्ख मानकर नीच योनियों में जाओगे। ऐसा कभी सुना हो हम ईश्वर का भोग करते हैं? ये पहली बार सुना है तुमने इतनी उम्र में। सत्संग से नित्य नवीन ज्ञान मिलता है। बुद्धि को प्रखर करो, ज्ञान को प्रखर करो। जो योग समाधि लगाते हैं उन योगियों को धन्यवाद है, प्रणाम है। लेकिन योग समाधि के बाद व्यवहार में सुख दुख में सम रहते हैं उनको 2 प्रणाम है। लेकिन दूसरे के दुख से जो द्रवित होते हैं और दूसरे के सुख से जो प्रसन्न होते हैं वो तो परम योगी है, वो तो हमारे आत्मा है। ओम, बस ताली में समय मत गवाओ। सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। सुख दुख में सम रहे। दुखेशु अनुद्विग्न मन, दुख में मन को उद्विग्न मत होने दो। सुखेशु विगतस्प्रहा, सुख में फंसो मत। जिसके दुनिया में जितने प्यारे उतने उसको खील चुभेंगे, कांटे चुभेंगे। मेरा बेटा प्यारा है, मेरी पत्नी प्यारी है, मेरा फलाना दोस्त प्यारा, मेरा फलाना, जितने प्यारे उतनी मुसीबत ज्यादा। लेकिन अनेकों में जो एक प्यारे की नजर से सबसे समता का व्यवहार करता है उसको कोई दुख नहीं, उसको आनंद है। आपके प्यारे कितने होंगे? 100, 200, 500। मेरे करोड़ों प्यारे हैं लेकिन मैं दुखी नहीं होता हूँ। ममता के कारण प्यारे माने तो शूल उभे, आत्मा के कारण प्यारे माने तो आए हैं त्रिशूलधारी शिव बन जाओगे। तुम्हारे सामने कई दुख आके चले गए, कई सुख आके चले गए। भगवान को भी तुम्हारे सामने आना होता है, परलय को भी तुम्हारे सामने आना होता है, सृष्टि को भी तुम्हारे सामने आना होता है। तुम इतने अजर अमर हो। बचपन को भी तुम्हारे सामने आना पड़ा, गई। जवानी को तुम्हारे सामने आना पड़ा, गई। बीमारियों को तुम्हारे सामने आना पड़ा, गई। स्वास्थ्य को आना पड़ा, गया। लेकिन तुम कब गए? तुम अपने आप को छोड़ सकते हो क्या? जिसको छोड़ नहीं सकते उसको पहचानने में क्यों मूर्ता करना, क्यों देर करना? जब भी दुख आए तो मन में आया, सुख आया तो मन में आया, इन दोनों को जानने वाला कौन है? मैं हूं अपना आप, हर परिस्थिति का बाप। ऐसा करके अहंकार भी नहीं करना है, विकारों में भी नहीं गिरना है, अपने आत्म विश्रांति पाना है। शांभवी मुद्रा है, ऐसा चिंतन करे और फिर ओमकार का जप करे, फिर शांभवी मुद्रा में चला जाए, यूं परम मंगल होता है। अभी श्राद्ध के पक्ष में श्राद्ध करना है, लेकिन केवल माता पिता दादा दादी नाना नानी नहीं, सब पितरों को जिनके किसी ने श्राद्ध नहीं किया, अवगत होकर घूम रहे उनको भी तर्पण कर देते हम तो। हमारे लिए जिन्होंने विरोध किया और उसका बेटा बेचारे का अमेरिका मर गया विरोध के फल में, कुदरत के प्रकोप से अपेंडिक्स के ऑपरेशन में उसका बेटा मर गया, फिर वो खुद भी मर गया और किसी ने कंधा नहीं दिया, उसकी बेटी ने कंधा दे के शमशान में जलाया, उस सज्जन का भी मैंने, मेरे बाप का श्राद्ध किया तो उसका भी मैंने तर्पण कर दिया, उसके बेटे का भी तर्पण कर दिया, मुझे आनंद मिला, मेरा अपना आनंद स्वभाव जगा, मैंने कोई उस पर मेहरबानी नहीं की। मैं जितना संकीर्ण होऊंगा उतना अपने को कोसूंगा, दुखी बनूंगा, जितना मैं उदार बनता हूं उतना ही ईश्वर के ऐश्वर्य के एकाकार होता हूं। जो दगाबाजी करके पैसे इकट्ठे करते हैं तो उनके कुल खानदान में वो पैसे आग लगा देते हैं, माँ बाप ने इकट्ठे किए, लेकिन बेटे और बेटियां और दोते नाती उन्हीं को नरक में भेजने के काम करेंगे। अगर जो ईश्वर के रास्ते चलता है, बेटे बेटियों को ज़्यादा हेरा फेरी चोरी चकोरी करके नहीं पालता, तब उनके बेटे बेटी भी मस्त होते हैं। भारती को मैं अच्छी तरह से डांटता रहता हूँ, नारायण को मजबूत हो रहे हैं, अगर उनको दूं लो 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 तो वो कहीं के नहीं रहे। ज़्यादा ममता मत करो, पाप करके भी बेटे बेटियों के लिए इकट्ठा करो तो क्या उनका प्रारब्ध नहीं है क्या, उनमें अक्ल नहीं है क्या, ईश्वर का कर्तव्य नहीं है क्या, ईश्वर अपना कर्तव्य निभाते फिर तुम ईश्वर के कर्तव्य में टांग क्यों अड़ाते। लघु भोजन, देखना सुनना सूंघना संयुक्त करके थोड़ा ध्यान भजन का, अंतरात्मा का रस, और अंतरात्मा के रस के साथ अंतरात्मा का ज्ञान। अंतरात्मा का ज्ञान क्या है कि जो ये आत्मा है, जैसे ये आत्मा सारे शरीर में फैला है तो इतना ही शरीर तुम्हारे में फैला है, अभी तुम महसूस करते हो, लेकिन अंतःकरण में, इसीलिए उसका नाम आत्मा है। घड़े में जो आकाश है तब उसका नाम घटाकाश है, लेकिन घड़ा न रहने पर भी आकाश ज्यों का त्यों रहता है, तो ये ब्रह्म हो गए। तो आप ये आत्मा ब्रह्म है, आप इतने व्यापक है कि उसी से उसी क्षण सूर्य को देख लेते हैं, आप उधर भी हैं, सूर्य के आप हैं, आप ये शरीर नहीं। विवेकानंद बोलते थे मैं दिखता हूं उतना नहीं, तो आप भी जो दिखते हैं वो नहीं है, जो मरते हैं वो आप नहीं है, मरने के बाद भी जो रहते हैं वो आप हैं। आप दुखी नहीं है, दुख को आप जानने वाले हैं, आप बीमार नहीं है, बीमारी को आप जानने वाले, आप चिंतित नहीं, चिंता को आप जानने वाले, इसको पकड़ लो बस। क्यों बबलू, सभी के बाप बन जाएंगे, बापू बन जाएंगे, बापू बाहर से बापू कोई कह ना कर, अंदर से आप बापू बन जाएंगे, बाप बन जाएंगे, सुख के दाता बन जाएंगे। अभी तो सुख मांगने के लिए भटकते, फिर सुख के दाता, तुम्हारे दर्शन से लोगों को सुख होगा, तुम्हारी वाणी से लोगों को सुख होगा, तुम दर्शन न दो वाणी न दो, एकांत में आप सुख स्वभाव में रहो तो आपको ब्रह्मांड व्यापी आपकी चेतना दूसरों को ऐसी ही मदद करेगी। जैसे हिमालय में बर्फ गिर गई तो यहाँ टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ऐसे आप अकेले में सुख में रहोगे तब भी वातावरण में खुशी खुशी, क्योंकि आपका आत्मा आनंद स्वरूप है, सत रूप है, चेतन रूप, आप सत हो, शरीर मिथ्या है, आप चेतन हो, शरीर जड़ है, आप आनंद स्वरूप हो, शरीर दुख रूप है। अब मिश्रण हो गया, गोटाड़ो वाली जैसे पानी खमण भेगू थी गयु, बेसन में खमण भेगू थी ना, तो खमण देखाय, पानी ए खमण देखाय, लो बेसन भी खमण देखाय, बेसन ने पानी छे पण देखाय खमण, ऐसे प्रकृति और पुरुष है, दिखता है संसार, प्रकृति अष्टदा है बदलती है और पुरुष जो का त्यों है, तो हम तो पुरुष है, चैतन्य है, प्रकृति अष्टदा बदलती है, बेसन ने पानी बीजू शू, ये मसाला देखा है खमन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल दो तो पानी में बचेगा क्या? ऐसी प्रकृति और पुरुष हटा दो तो जगत है ही नहीं। सारा खेल है प्रकृति पुरुष का। तो
शारीरिक विश्राम पर्याप्त नहीं है। शारीरिक विश्राम ज्यादा करो तो आलसी हो जाओगे, पराधीन हो जाओगे, विकारी हो जाएंगे। जीवात्मा का परमात्मा में विश्राम बहुत जरूरी है। श्रम के पहले विश्राम होता है और श्रम के बाद भी विश्राम होता है, लेकिन वो शरीर तक महदूद रहता है तो जीवन बह जाता है। अगर आत्मा में, जीवात्मा का परमात्मा में विश्राम हो तो परम उन्नति, परम गति, परम तृप्ति मिलती है, परम योग हो जाता है। जगत में दो ही प्रक्रिया चल रही है, जहां संयोग है वहां वियोग है, जहां जन्म है वहां मृत्यु है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां लाभ है वहां हानि छुपी है। लाभ ही लाभ सतत नहीं टिकेगा, लाभ की कुर्सी से हटना पड़ता है। तो एक है नित्य योग और दूसरा होता है नित्य वियोग। तो वस्तुओं का वियोग हो रहा है, शरीर के कणों का वियोग हो रहा है, श्वासों श्वास का खर्च होकर आयुष्य का वियोग हो रहा है। इसको कोई थाम नहीं सकते। और जीवात्मा का परमात्मा के साथ सदा का योग है, उसका वियोग कोई कर सकता नहीं। जो संसारी सुख चाहता है उसको दुख मिले बिना रह नहीं सकता, ब्रह्मा जी भी उसको निर्दुख नहीं कर सकते। जो संयोग जन्य सुख चाहता है उसको दुख जरूर मिलता है। तो संसार के दुख की, सुख की जितनी लालसा तीव्र उतना ही दुख तीव्र, जितनी लालसा कम उतना दुख कम। और संसार के सुख की लालसा नहीं है तो दुख भी नहीं है। बोले हमको लालसा नहीं लेकिन हमारे को तो बहुत दुख है। लालसा नहीं है और दुख हो संभव ही नहीं है। दुख होता है लालसा के होते, लालसा नहीं तो दुख नहीं होगा। संसार से सुखी होने की, ठीक ठाक रहने की जो लालसा है वही दुख की इच्छा। तो लालसा कैसे मिटे? तपस्या करने से लालसा नहीं मिटती। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, हिरणपुर बनाने की लालसा समझ पड़ जाए, नित्य योग में विश्राम मिल जाए, वो धन्य हो गया। थोड़ी मेहनत में ऊंचे पद को पा लिया उसने। अगर नित्य योग के तरफ नजर नहीं है तो कितनी वस्तुओं का योग करो, संयोग करो। वो नित्य योग ऐसा है, दुखेन संयोगात योग संगीता। दुख का आपका संयोग नहीं होगा, दुखद अवस्था तो आएगी लेकिन दुख के साथ आपका मेल नहीं होगा, तो आप तो बहादुर हो गए। दुख नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन दुख आए और आपको दुख ना हो बहुत ऊंची बात। अपयश ना हो ये तो बहुत छोटी बात। अपयश हो लेकिन अपयश का दुख ना हो, वाहवाही हो और वाहवाही का सुख ना हो, तो आप महापुरुष बन गए। सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मता। तो अब एक काम करना है, आपको बहुत तपस्या करनी पड़ी आज। तो सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मता, सुखद अवस्था आए तो आप सुखी मत होइए। जैसे कुत्ते को जलेबी दिखाई तो पूंछ हिलाता, मुंह में लाड़ आ जाती है, डंडा दिखाते तो डर जाता है। तो उस तुच्छ जीव जैसी स्थिति से अपने को ऊंचा उठाए। सुख के भोगी मत बनिए, सुख का उपयोग कर लीजिए, बांट लीजिए, उपयोग कर लीजिए, लेकिन उन चीजों में सुखी मत। तथा किम, आखिर क्या, कब तक? ये मिला, वो मिला, बेटा मिला, ये मिला, लेकिन कब तक? ऐसे ही दुख आए तो दुखी मत होइए। तो सुख और दुख में सम होने से आपको परमात्मा में विश्राम मिलेगा। ओए हो, सावधानी तो जरा सी और वो अनुदान अब माफ है। थोड़ी सी सावधानी, सावधान बबलू कमर सीधी, थोड़ी सी सावधानी और बदले में महावैभव। केवल सुख में सुखी नहीं होना है, दुख में दुखी नहीं होना है। सुख को जो जानता है उसमें टिकना है, दुख को जो जानता है उसमें टिकना है। कपट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छुप के फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में तृप्त हो जाएं। अगर मैं फिल्म देखना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है बताओ? कोई रोक सकता है क्या मेरे को? किसी को पता न चले इस ढंग से भी मैं फिल्म देख सकता हूं, लेकिन फिल्म देखने से मुझे क्या घाटा होगा मैं जानता हूं। और अपने आत्मा में विश्रांति पाने से, मैं जहां रहता हूं टीवी भी नहीं है मेरे कमरे में, नहीं तो इतनी बड़ी संस्था है दुनिया में क्या चलता है, चलो रखो, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। ये वो अभी इलेक्ट्रॉप है, छोरे कुछ बता देते हैं तो दिखा देते हैं दो मिनट का भी किसी का, वो भी हम देखते नहीं, सुन लेते हैं आ जाती है जा। जितना भी संयोग है, जितना भी बाहर के वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से आप सुखी होना चाहते हैं, उतने आप पराधीन हैं। और पराधीन स्वप्ने सुख नाही। आप स्वाधीन होना सीखिए। हे बीड़ी तू सुख दे। हे
अष्टावक्र मुनि ने जनक को कहा, अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्व आत्मन मन्यते यदा। जब अपने को अकर्ता और अभोक्ता स्व आत्मा को ये जानेगा तब उसकी सारे चित्त की वृत्तियां क्षीण हो जाएगी। चित्त की वृत्तियों से ही इसको जन्म मरण हो रहा है, चित्त की वृत्तियों से ही राग द्वेष हो रहा है, चित्त की वृत्तियों से ही भय शोक हो रहा है, चित्त की वृत्तियों से ही काम क्रोध हो रहा है, चित्त की वृत्तियों से लोभ मोह हो रहा है, चित्त की वृत्तियों से ही परेशानियों का प्रादुर्भाव हो रहा है। जब उसकी चित्त वृत्तियां क्षीण हो जाएगी अथवा बाधित हो जाएगी। बोले महाराज क्षीण और बाधित क्या? जैसे रस्सा दिख रहा है उसको जला दो, काठी का रस्सा जल गया, नारियल की रस्सी से जो बनता है, नारियल के तंतुओं से जो काठी बनती है रस्सी, उसको जला दो तो उसके सड़ तो पड़े रहेंगे लेकिन अब वो बांध नहीं सकेगी। मरुभूमि में पानी दिखता है, जरा जाके ठीक से देख के आओ फिर अपनी गद्दी पे बैठो तो भी दूर से तो पानी दिखेगा लेकिन अब उसका आकर्षण नहीं रहेगा। ठूंठे में चोर दिखा किसी को, किसी को साहूकार दिखा, इन बैटरी मार के फिर आके बैठे तो अभी सो चोर की भावना से चोर दिखेगा, तपस्वी साधु की भावना से वो उसको साधु कल्प लो, लेकिन अंदर से जानते कि ठूठा है, न चोर है न साहूकार है। ऐसे जगत में न पुण्य है न पाप है, न सुख है न दुख है, न अपना है न पराया है, एक परब्रह्म परमात्मा का विवर्त है, ऐसा ज्ञान मति में बना रहे। इसलिए न जगत का आकर्षण होगा न द्वेष होगा, न राग होगा न द्वेष होगा। तो जो किसी से राग नहीं करता वो सबको प्रीति करता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से राग नहीं करता तो किसी से द्वेष भी नहीं करेगा, तो सबसे प्रीति करता है, जो सबसे प्रीति करता वो किसी से प्रीति नहीं करता। जो किसी से प्रीति करता है किस थोड़ों से किसी से करता है तो वो किसी से द्वेष भी करेगा, प्रिय की फेवर लेगा अप्रिय का द्वेष करेगा, लेकिन किसी से प्रीति नहीं है तो किसी से द्वेष नहीं है। जिसकी किसी से प्रीति नहीं उसका किसी से द्वेष नहीं, तो वो सच्ची प्रीति सबसे करता है। हम मोह से परिवार को प्रीति करते हैं तो ग्राहकों का बराबर खींचेंगे ग्राहकों का सत्व, लेकिन जिसको परिवार से प्रीति नहीं है तो ग्राहकों का सत्व नहीं खींचेगा, तो सारे विश्व का वो प्रेम पात्र बन जाएगा। जब विश्व का प्रेम पात्र हो जाएगा तो कुटुंबियों का भी हो जाएगा, कुटुंबियों का भला हो जाता है। इसमें हकीकत में लगता है कि हम बच्चों से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, फलाने से प्रेम करते हैं, वास्तव में हम वासना से, इंद्रियों से प्रेम करते हैं।
मति में बताते ज्योति शाम मति तद ज्योति तमसा परम मुच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति है और अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। वह ज्ञान स्वरूप जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। तद ज्योति एक सूर्य ज्योति है, चंद्रमा ज्योति है, अग्नि ज्योति है। इन सबको इन ज्योतियों को देखने के लिए नेत्र ज्योति चाहिए। नेत्र ज्योति को देखने के लिए मन ज्योति चाहिए। मन ज्योति को देखने के लिए मन ठीक देखता कि नहीं देखता मति ज्योति चाहिए। लेकिन भगवान इन सब ज्योतियों की ज्योति है। मति को भी अगर पत्ता न मिले तो मति क्या चलेगी, मन क्या चलेगा और आंख क्या चलेगी और सूर्य चंद्रमा क्या देखेगा। ज्योतियों की ज्योति मैं हूँ और सबके हृदय में हूँ, वह एड्रेस बता रहा है। कान से शब्द सुनाते हैं शब्द ज्योति, तो शब्द ज्योति का निर्णय करता है मन ज्योति मति ज्योति, और मति ज्योति को भी ज्योति देने वाले। मति ठीक निर्णय करती है शब्द का, मन ठीक सुनता है, कान ठीक सुनते कि है करना पड़ता है। कान में तो आवाज टकराई लेकिन मन को समझ में नहीं आया तो बोले है करा तभी भी मैं और समझी गए तो भी तो अन्य महत्व। जैसी कृष्ण जीवा भी एक स्वाद की ज्योति है, स्वाद का ज्ञान रखने वाली, स्वाद को प्रकाशित करने वाली, खट्टा स्वाद है, खारा है, तुरिया है, लवण है, चरपरा है, चटपटा है, क्या है। तो इस जीवा के साथ मन ज्योति और मन ज्योति के साथ मति ज्योति और इन सब ज्योतियों की ज्योति मैं चैतन्य आत्मा। तो जैसे इन इस शरीर के ढांचे में मैं हृदय में संविष्ट हूँ और अज्ञान से परे हूँ। अज्ञान होता है मति में, अज्ञान होता है मन में, अज्ञान होता है इंद्रियों में, मुझ आत्मा में कोई अज्ञान नहीं। जयराम जी बोलना पड़ेगा, ये तो खास पॉइंट है। महाराज जी बोल रहे हैं ये तो खास पॉइंट है जयराम जी के। तो ज्योति सामपि जुतः ज्योति तमसा परम उच्चते, वह तम से परे कही गई है। तम माना अज्ञान। अभी तुमने जो भोजन किया उसका रस कौन सी नस नाड़ी में किस रूप में है ये तुम्हें ज्ञान नहीं है। अर्थात तुम्हारी मन और बुद्धि को ऐसी शिक्षा नहीं मिली डॉक्टरी, इसलिए आप नहीं बता सकते। लेकिन है तो आपके अंदर ही, आपके सिर में बाल कितने और रोम को कितने पता नहीं, फिर भी आपके, आपके पेट में, आपकी नस नाड़ियों में कौन सा द्रव्य किस समय कितना है, क्या काम कर रहा है पता नहीं, फिर भी आपने ऐसे इस ब्रह्मांड की सब बातें आपकी मन बुद्धि न जाने, फिर भी आपके सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में ही है। अपने को देह मानकर अगर तुम सर्वज्ञ और अंतर्यामी होना चाहते हो तो संभव नहीं, और अपने को ज्योति सामति ज्योति स्वीकार करके तुम अल्पज्ञ होना चाहते हो तो भी संभव नहीं, फिर तो तुम सर्वज्ञ हो। सर्व का जो सार है उसको जान लिया। सर्वज्ञ का मतलब ये नहीं कि एक 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 चीज को जानता हो। जैसे एक घड़ा को जान लिया तो घड़े का सार मिट्टी, मिट्टी सब घड़ों का सर्व है, गहनों का सब सर्व सोना है, चावल के दो दाने को एक दाने को देख लिया तो सारे पतीले की पोजिशन जान लिया। ऐसे अपने अंतर आत्मा को देख लिया, वो आत्मा सर्व का है, उस आत्मा को देख लिया तो सर्व अंतर्यामी हो गया। तो मैं तो अंतर्यामी के लिए ध्यान करें कि आना गरमा गहूं क्यों पड़े अखंड, बाजरो क्यों अखंड, रुपया क्यों अखंड, बहसो क्यों ये बधू क्यों जानता ऐसे का। और ऐसा तो वो वागरी लोगों के पास छोटी मोटी विद्या होती है, घर के चावल दाने बताओ तो सब बता देंगे मिर्ची फलानी जगह पड़ी है। ये विद्या और है, और ये आत्मविद्या इनसे सबसे ऊपरी विद्या है। पोस्ट और मन का, सब व्यक्तियों के मन का अगर होने लगे तो संसार ठप हो जाएगा। कभी किसी के मन का, कभी किसी के मन का, और कभी नियति के मन का होगा, और कभी भगवान आपके मन का न करवा कर आपको मजबूत करने के लिए और के मन का भी करवा दे। लेकिन तुम स्वीकार कर लो, अपने तरफ से प्रयत्न करो, लेकिन अंदर से कोई पकड़ न रखो तो आप अंदर से संतुष्ट हो जाओगे। और
फिर से पाने को गए
जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद में, ब्रह्मानंद की प्रगाढ़ मस्ती में, अब उस मस्ती में ताने वो अकाट्य हो जाता है। भगवान शिव ने को गए जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद में, ब्रह्मानंद की प्रगाढ़ मस्ती में, अब उस मस्ती में जो संकल्प होता है ना वो अकाट्य हो जाता है। भगवान शिव जी को और विष्णु जी को
कहीं भी गए, हिमालय में हर साल जाते हैं, वातावरण नहीं मिलता है बैठ के समाधि करें। आगे चल के तो समाधि भी त्याज है क्योंकि परिच्छिन्नता बनी रहती है। तत्व ज्ञान के बाद भी जीवन मुक्ति के लिए एकांतवास की बहुत मीठी जरूरत पड़ती है।
नारायण नारायण, इस सपने जैसे जगत को सच्चा समझना, वे आदमी निद्रा में है। दुख मिथ्या, सुख मिथ्या, गरीबी मिथ्या, अमीरी मिथ्या, मान मिथ्या, अपमान भी झूठा। होके चला गया अपमान, मान होके चला गया, मित्र भी चले गए मिथ्या, शत्रु भी मिथ्या, पुण्य भी मिथ्या, पाप भी मिथ्या, अपना भी मिथ्या, परायापन भी मिथ्या। बुरे विचार आए तो भगवान का नाम लो, बुरे विचार आए और गए मिथ्या है, लेकिन उसको देखने वाला मन वो भी बदलता है। मन को देखने वाला मैं नहीं बदलता, मैं चेतन आत्मा हूँ। अरे ओम ओम ओम, मिथ्या विचार निकल जाएंगे, पाप के विचार बन जाएंगे। जब अपमान हो तो बोले भी मिथ्या है, मान भी मिथ्या है। ये बात गुरु भक्तों को टिकती है, नहीं तो दूसरे फिर नास्तिक हो जाते हैं, मिथ्या मिथ्या समझ के आवारा गर्दी हो जाते हैं।